السلام علیکم، یہ پارٹ 12 ہے کتاب کمانڈو 4۔ یہ کتاب نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ پیش کر کرت باڈیو لائبریری، آواز پرویز احمد خان، مصنف منیر احمد راشد۔ دیگر معلومات یا کتابوں کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0321-2138-225۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 12۔ اول تو یہ ہماری ذمہ داری نہیں کہ ہم جنگ جیتیں، ہمارا کام بس اتنا ہے کہ ہم اس مملکت خدا داد کی حفاظت کے لیے جان لڑا دیں، پھر فتح ہو یا شکست یہ اللہ کی مرضی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں یا میرے جیسے محب وطن جانوں کا نذرانہ پیش کریں تو لازمی فتح ہو، البتہ یہ ضروری ہے کہ ہم دیانتداری سے اپنا پورا زور لگا دیں۔ بات تو تمہاری خاصی معقول ہے، میں نے کہا، لیکن اگر پہلے سے یہ سوچ لیا جائے کہ شکست ہوگی تو تمہارا کیا خیال ہے کہ کوئی شخص جم کر لڑ سکتا ہے؟ میں نے یہ کب کہا کہ یہ سوچ لیا جائے کہ شکست ہوگی؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ دنیا دبنا، پیچھے ہٹنا، شکست تسلیم کرنا ایک مومن کی شرست میں شامل نہیں۔ اسلام کو ماننے والا اور عمل کرنے والا کبھی کسی غیر کی برتری کو مان ہی نہیں سکتا، اور یہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ جب بھی حق اور باطل کی جنگ ہوتی ہے تو فتح تو اہل حق کی ہی ہوتی ہے، چاہے وہ ملک گیری کی صورت میں ہو، چاہے شہادت کی صورت میں۔ اس کی مدلل گفتگو نے مجھے لاجواب کر دیا تھا، اور میں بہت خوش تھا کہ مجھے ایسے لوگ میسر آ رہے ہیں جن کے سامنے منزل بالکل واضح ہے۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد گفتگو اور رخ اصل مسئلے کی طرف مڑ گیا۔ کمر اسلام نے بتایا کہ یہاں آنند نامی ایک مقامی لیڈر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ہماری جنگی کشتیوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ کمر اسلام کو اس منصوبے کی اطلاع اپنے ایک دوست کے ذریعے ملی تھی، جو کمر کو بنگالی ہونے کے ناطے اپنے مشن میں شامل ہونے کے لیے اکثر و بیشتر دعوت دیتا رہتا تھا۔ اسے مکمل معلومات حاصل کرنے کے بعد میں چھاونی گیا اور بحریہ کے ذمہ دار افسر کو اس منصوبے کی اطلاع کر دی۔ اس خبر نے پوری چھاونی میں ہجڑ مچا دی، اور فوراً ہنگامی طور پر کشتیوں کی حفاظت کے خصوصی انتظامات کرنے کا حکم صادر فرما دیا گیا۔ ہوائی اور خشکی راستوں کے علاوہ سمندری راستوں کی بھی بھرپور جانچ پڑتال ہونے لگی، اور چند گھنٹوں کے اندر ایسے انتظام کر لیے گئے کہ پرندہ بھی ہماری نظروں میں آئے بغیر کشتیوں تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ کامل اسلام کی اطلاع کے مطابق آج کی رات آپریشن ہونا تھا۔ میں بھی خصوصی اجازت حاصل کر کے کشتی پر پہنچ گیا تھا۔ ہماری کشتی ساحل سے 10 میل دور کھلے سمندر میں موجود تھی۔ میرے علاوہ وہاں کیل کانٹے سے لیس 3 بحری کمانڈوز بھی موجود تھے۔ ہر شخص اپنی اپنی جگہ بالکل چوکس تھا۔ ہم چاروں عرصے پر کھڑے تھے اور آنکھوں سے دور بین لگائے کبھی تاروں بھرے آسمان کا جائزہ رہے تھے، اور کبھی تحد نظر پھیلے کالے سمندر کا۔ ذرا ذرا سے ہاتھ پر چونک جاتے اور ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیتے۔ جوں جوں رات گہری ہوتی جا رہی تھی، ہماری پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ دن میں عجیب عجیب وسوسے آ رہے تھے، کیا ان لوگوں نے آپریشن ملتوی کر دیا؟ کیا انہیں معلوم ہو گیا کہ ہمیں ان کے مشن کی اطلاع مل چکی ہے؟ کہیں ہمارے ایک لمحے کی غفلت میں وہ کام کر تو نہیں گئے؟ ایسی ہی سوچوں میں ساری رات بیت گئی، اور سپیدہ سہر نمودار ہونے لگا۔ ہماری الیکٹرانک آلات بتا رہے تھے کہ کوئی آپ دوست ہماری کشتی کی طرف نہیں آئی۔ ہم بھی رات پر چوکنے رہے تھے، اور ہم نے کہیں دور و نزدیک کسی مشکوک جہاز یا کشتی کو نہیں دیکھا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا، ہم نے سوچا، لیکن یہ خوشگوانی تھی، دل اندر سے مان کر نہیں دے رہا تھا۔ چھٹی اس کہہ رہی تھی کہ ابھی کچھ ہونے والا ہے، پھر اچانک میں نے ہلکی سی آواز سنی جس کے آستے سے پانی میں اترا ہو۔ ایک خیال بجلی کی طرح میرے ذہن میں گوندا، کہیں انہوں نے غوطہ خوروں کی مدد سے تو کشتیوں پر حملہ نہیں کیا؟ ادھر ہم کسی کشتی کے منظر ہونے، ادھر کوئی غوطہ خور چکے تھے، ٹائم ہم ہماری کشتی سے چپکا کر چلتا بنے ہمیں خبر بھی نہ ہو۔ اس خیال کی آتی ہی میں نے اپنے ایک ساتھی کو اشارہ کیا، خود سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ تھوڑی دور نیچے جانے کے بعد جیسے ہی میں نے گردن پانی سے باہر نکالی تو میری نظر اس غوطہ خور پر پڑی، جو تیزی سے پانی میں ڈبکی لگا رہا تھا۔ میں نے اسی طرف ایک جھلکی دیکھی تھی، البتہ وہ ٹائم بم میری نظروں کے سامنے تھا، جو ایک مغناطیسی مدد سے کشتی کے ساتھ چپکا دیا گیا تھا۔ چند لمحوں بعد میرے قریب بالکل میرا وہ ساتھی پانی کی سطح پر ابھرا، جسے میں نے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں نے اسے جلدی سے بم کی طرف متوجہ کیا، اور اسے کہا کہ وہ بم کو نقارہ بنایا، اور میں خود اس غوطہ خور کے تعاقب میں چل دیا۔ ویران جزیرے پر ماسٹر وسکی کے ساتھ سمندر میں گھنٹوں تیرنے کی مشق اس وقت میرے کام آئی، اور میں نے پانی کے اندر اس غوطہ خور کو تلاش کر لیا جو تیزی سے مجھ سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ اسے دیکھتی میرے بدن میں بجلیاں بھر گئیں، اور میں کسی خطرناک شارک کی طرح پانی کو چیرتا اس کی جان بڑھنے لگا۔ ہم دونوں تیزی سے تیر رہے تھے، ہمارا درمیانی فاصلہ لمحہ لمحہ کم سے کم اتر ہوتا جا رہا تھا۔ میں جلد از جلد اسے پکڑ لینا چاہتا تھا، ابھی میں اسے تھوڑی دور ہی تھا کہ مجھے اپنے پیچھے کسی دوسرے شخص کا احساس ہوا، اور حیوانی جبرت کے تحت میں نے تیزی سے نیچے کو غوطہ لگایا۔ میں نے محسوس کیا کہ سرسراتی ہوئی میرے بالکل قریب سے گزر گئی۔ او ایرو شوٹر، ایک خیال میرے ذہن میں بجلی کی طرح کوندا، اور میرا جسم سن ہو کر رہ گیا۔ ایرو شوٹر سمندر لڑائی کا ایک خطرناک ہتھیار ہے، اس کے ذریعے ننے ننے زہریلے تیر دشمنوں پر برسائے جاتے ہیں۔ अगर कोई तीर जिस्म को छू ले तो सारा जिस्म मफलूज हो जाता है और फौरन इस शख्स की मौत वाकया हो जाती है। मेरे पीछे आने वाले शख्स ने भी एरो शूटर से मुझ पर हमला किया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझके निशाने पर नहीं आया। अलबत्त मेरा वो दुश्मन जो मुझसे आगे तैर रहा था उसके जद में आ गया था। मैंने अपने करीब से उसकी मुर्दा जिस्म को समुंदर की हिस्सा तय की तरफ जाते देखा। दुश्मन के मुसल्ला होने के एहसास ने मुझे मोहताज कर दिया था, लेकिन मैंने उसे हर हालत में गिरफ्तार करने का तहिया कर लिया था। बाहर शायद सूरज तुलू हो चुका था क्योंकि पानी के अंदर भी काफी उजाला हो गया था। मैंने अपने सर पर पहने हुए फौलादी खोल में लगी लाइट बुझा दी और तैरता हुआ इस गोताखोर के पीछे पहुंच गया, जो अपने साथी की नागहानी मौत पर हैरान हो रहा था। उसका ख्याल था कि इसका निशाना ठीक बैठा है और मैं जख्मी होने के बाद नीचे की तरफ गया हूँ, मगर जब उसने अपने साथी को तह में बैठते देखा तो उसे हैरत का शदीद झटका लगा। मैंने उसकी हैरत से फायदा उठाते हुए अचानक पीछे से उस पर हमला कर दिया और वो पाइप जो ऑक्सीजन की को सिलेंडर से मास्क तक पहुंचाता था खींच कर मास्क से अलग कर दिया। वो इस गैर मुतवक्को हमले से घबरा गया और फुर्ती से सतह की तरफ उठने लगा। ऑक्सीजन का सिलसिला मुनक़ता होने के बाद उसे अब वैसे भी ताज़ा हवा की ज़रूरत थी। मैं भी तेजी उसके पीछे लपका, उससे पहले के समुद्र सदा समुद्र पर नमोदार हो गया। चंद लम्हे बाद वो मेरे बिल्कुल करीब ही पानी से उभरा और जल्दी से मास्क हटाकर लंबी लंबी सांस के जरिए ऑक्सीजन अपने फेफड़ों में पहुंचाने की कोशिश करने लगा। अगर वो चंद ही सांस खींच पाया था कि मेरी पूरी कुवत से घोंसा उसकी नाक पर रशीद कर दिया। वो एक बार फिर पानी में गायब हो गया, मगर जल्दी दोबारा नमोदार हुआ। नाक से खून तेजी से बह रहा था और वो खलाहट में इधर उधर हाथ पांव मार रहा था। एरो शूटर भी हाथ से छोड़कर पानी में गायब हो चुका था। मैं एक मरतबा फिर उसकी तरफ बढ़ा और वो दो चार जोरदार हाथ जमाए तो उसने बिल्कुल हाथ पांव छोड़ दिया और मुर्दा मछली की तरह पानी पर तैरने लगा। मैं उसकी बगलों में हाथ देकर सहारा दिया और तैरता अपने जहाज पर पहुंच गया। मेरे साथी बेचैनी से मेरा इंतजार कर रहे थे, दो कमालोज मुझे वहां नजर ना आए तो मैंने उनके बारे में पूछा। पता चला वो मेरे ताकों में समुद्र में गए हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों भी वापस आ गए। दुश्मन गोताखोर अभी तक बेहोश था। हम एक छोटी कश्ती के जरिए बंदरगाह तक पहुंचे, जहां से हमें एक फौजी इमारत के बड़े हाल में पहुंचा दिया गया। कुछ बड़े अफिसर भी वहां मौजूद थे, शायद एक डॉक्टर साहब भी थे जो बेहोश गोताखोर की होश मिलाने की तदबीर कर रहे थे। मायने के दौरान उन्होंने बताया कि मरीज की नाक की हड्डी चूर चूर हो चुकी है। थोड़ी देर बाद वो होश में आ गया, मगर दर्द से बड़बड़ा रहा था। अफिसर ने उससे तफ्तीश शुरू की, मगर कोई काम की बात मालूम ना कर सके। तशद्दुद भी उसको जुबान खोलने पर मजबूर ना कर सका, तो मैंने एक ऑफिसर से कहा, जनाब आप सिर्फ 10 मिनट के लिए हमें तनहा छोड़ दें तो मैं इससे खासी काम की बातें मालूम कर लूंगा। मेरी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई और सब लोग हाल से बाहर चले गए। इस अचानक तब्दीली पर वो गोताखोर एक लम्हे के लिए चौंका, लेकिन फिर ये मुतमंदर नजर आ जाएगा जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो। ये बात तो मैं समझ रहा था कि हर किस्म के जिस्मानी तशद्दुद बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो चुका है, इसलिए मैंने नफसियाती ज़र्ब लगाने की कोशिश की। उसे ज़मीन से उठाकर सोफे पर बिठाया और कहा, देखो जवान तुम्हारा जो भी नाम है लेकिन मैं तुम्हें अयूब ही कहूँगा, क्योंकि राह के हाथों जो हशर अयूब का हुआ है वही हर बंगाली का होगा, इसलिए मुक्ति बहानी का हर कान को मेरे नज़दीक अयूब ही है। मैं जरा देर उसका रद्द अमल देखने के लिए खामोश हुआ। वो हैरत से मुझे देखता रहा, फिर कुछ बोला नहीं। मैंने बात को जारी रखते हुए दोबारा कहना शुरू किया, शायद तुम्हारे इलम में ना हो गया, अयूब को कत्ल कर दिया गया है। उसका कसूर सिर्फ इतना ही था कि जितना तुम्हारा, यानी ये कि वो मेरी नज़रों में आ गया था। तुम कमर हो ना? उसने ताइब नज़रों से मुझे देखा और मैंने असबाब में सर हिला दिया। अपनी बात की तस्दीक हो जाने के बाद खौफ के एक साया उसके चेहरे पर आकर गुजर गया। उसने थूक निकलते हुए कहा, देखो तुम ये जान से मार डालो लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। इसकी खौफजदा हालत से महफूज होते हुए मैंने हल्का सा एक कहकहा लगाया और मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा, तुम भला मुझे क्या बताओगे, तुम्हें तो खुद भी कुछ मालूम नहीं सिवाय इसके कि बंगाली एक मजलूम कौम है जिस पर पंजाबी साम्राज्य जुल्म व सतम कर रहा है, जिसे निजात हासिल करना बहुत ज़रूरी है और निजात का जरिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि पाकिस्तान तोड़कर बांग्लादेश बनाया जाए। क्योंकि गलत क्या कहा मैंने तहरीक आज़ादी बांग्लादेश की पूरी थीम उसके सामने रख दी, मगर वो फिर भी खामोश रहा। चंद लम्हे उसके तासरात तारने के बाद मैंने कहा, मैं जानता हूं कि तुम मुक्ति बहानी के एक अदना कारकुन हो और तहरीक से तुम्हारी वाबस्तगी बड़ी पुरखलूस है, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम बांग्लादेश की आज़ादी के लिए जान भी कुर्बान कर सकते हो। तुम्हारा जज्बा ऐसा है कि मैं सलाम करता हूं, लेकिन जो काम तुम इस जज्बे से करने जा रहे हो वो सरासर गलत है। खैर तुम उसे नहीं मानोगे और वो सारी तकरीरें मुझे जुबानी सुना दोगे जो बंगला बंधु अपने जलसों में अक्सर कहा करते हैं। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मैं तुम्हें हकीकत से आगाह कर दूँ। मैं ज़रा देर को रुका और उसे अपनी तरफ मुतवज्जो पाकर दोबारा कहने लगा, शायद तुम्हें मालूम ना हो कि तुम्हारी तहरीक आज़ादी का कायद कौन है, और शायद क्या यकीनन तुम्हें नहीं मालूम, तुमने कभी DM5 की शक्ल भी नहीं देखी होगी। मेरी जुबान से DM5 का नाम सुनकर उसे एक जबरदस्त झटका लगा और वो आंखें फाड़े हुए मुझे देखने लगा। तुम डीएम5 को जानते हो? डीएम5 क्या, मैं तो DM4321 को भी जानता हूँ और तुम्हारे बिग बॉस को भी। इस मर्तबा से पहले से ज्यादा हैरत हुई। मैंने बात को जारी रखते हुए कहा, जिस बिग बॉस को तुम लोग एक हवा समझते हो उसे छुपता फिरता है और तुम्हारे सीधे सारे डीएम भी चूहों की तरह बिल में घुसे रहते हैं। खैर उनसे तुम्हें निमट लूंगा। तुम ये बताओ, तुम्हें मालूम है तुम्हारा बिग बॉस कौन है? मेरे अचानक सवाल पर उसने नफी में गर्दन हिलाकर जवाब दिया। मुझे इसी जवाब की तवक्को थी, लेकिन उसे हैर सदा करके दरअसल मैं उसकी सिद्ध को ख़त्म करना चाहता था जो इसने मेरे सवाल का जवाब ना देने के लिए इख्तियार कर ली थी। इसके बेसाख का जवाब से मुझे यकीन हो गया कि वो अपने इस अदम को भूल चुका है कि जान दे दूंगा मगर मालूम फराम नहीं करूंगा। और हैर सदा और मुजस नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। उसे यह भी ख्याल नहीं रहा था कि वो एक मुजरम की हैसियत से मेरे सामने मौजूद है। दरअसल जिन तनजीमों और तहरीकों के सरकर्दा अफराद जेर जमीन रहकर काम करते हैं और कारकुनों से उनका कोई रब्ता नहीं होता, तो उनके आम कारकुनों में ये जज्बा तजस्स जरूर पैदा होता है अपने बास के बारे में कुछ तो मालूम हासिल करें। कहते हैं कि जिस चीज़ को जितना ज्यादा छुपाया जाए उसको देखने की ख्वाहिश इतनी ही ज्यादा होती है। ये हालत इस वक्त इस गोताखोर की थी। मैंने उसकी हैरत से फायदा उठाते हुए उसके जहन को एक और समझ में मोड़ने का फैसला किया और बिग बॉस के बारे में मालूम फराहम कर देखा। तुम्हारे बिग बॉस का नाम आंद्रे फूफ है, तो उससे उसका ताल्लुक है। उसका नाम ही तकरीबकारी करना है। दौलत की खातिर किसी भी मुल्क की हुकूमत का तख्ता उलट सकता है, लेकिन वह दौलत की खातिर नहीं आया बल्कि यहाँ वो रूस के तौसी पसंद अजायम की तकमील की खातिर आया है। तुम्हें नहीं मालूम कि भारत तो पहले ही रूस की गोद में, अब इसे पाकिस्तान चाहिए। गर्म पानियों की सरजमीन अपने इस मनसूबे की तकमील के लिए उसने भारत को आला कार बनाया जो पहले ही हमसे खार खाता है। उसे 1965 की शिकस्त का बदला भी लेना है तो पाकिस्तान को दोबारा हिंदुस्तान में जम करने की देरी न ख्वाहिश भी पूरी करनी है। तुम्हें दोनों ने मिलकर एक मनसूबा बनाया जिसका नाम रखा गया मर्डर प्लान। यही पाकिस्तान के कतर का मनसूबा। खुशकिस्मत से मुझे पहले ही अपने इस मनसूबे का इलम हो गया और मैंने सिलसिले की अहम कड़ियाँ गायब कर दी, मसलन डॉक्टर प्रकाश और निसार बर्मी वगैरह। आंद्रे फूफ बिल्कुल आगोश हो गया और उसने मर्डर प्लान का नाम भी तब्दील कर दिया है। अब ये डेथ मिशन है। तुम्हारी सारे डीएम इसी डेथ मिशन की डी और एम है। वो इतनी नाकाबिले यकीन बातें सुनकर बिल्कुल ही सुन हो गया था। उसके लिए तो DM5 ही एक मुअम्मा था, जबकि मैंने पूरे मनसूबे की तफसीलात उसके सामने रख दी थी। उसकी गहरी सोच में डूबी हुई आंखें बता रही थी कि इन मालूमात ने उसके अंदर हलचल मचा दी है। मैं थोड़ी देर तक खामोशी से उसे देखता रहा, फिर वो खुद मुझसे मुखातिब हुआ। तुम्हारी बातें मुझे कुछ और सोचने पर मजबूर करनी है, लेकिन बंगाली कौम पर होने वाले जुल्म और सितम तो हकीकत है। उसके बारे में तुम क्या तवज्जो पेश करोगे? जुल्म वो जुल्म है, जो जुल्म करता है वो जालिम है। खाम मैं खुद ही क्यों ना हूँ, हमारी हुकूमत में वो चंद काली भेड़े हैं। हमारे पाक दरिया में कुछ गंदी मछलियाँ हैं जिनका दरिया में रहना खतरनाक है और जिनका ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन चंद मछलियों से निजात हासिल करने के लिए पूरे दरिया के पानी में जहर घोल देना मेरी समझ से बारातर है। बंगाल की आवाम को हकूक मिलने चाहिए, ठीक है, लेकिन हकूक की आग लेकर पाक सरजमीन में कौमियत का जहर फैलाना, हिंदुओं के साथ मिलकर अपने ही भाइयों का खून करना और बहनों की इज्जतों से खेलना, मैं समझता हूँ कि एक मुसलमान की शान के खिलाफ है। मुसलमानों की एक ही कौमियत है, को बस मुसलमान है या बंगाली, पंजाबी, पठान, सब दुश्मन की चाल है, जिसे मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ और चाहता हूँ कि अपने हर इस भाई को बता दूँ जिसकी तासुब के नाग ने डस लिया है। मैंने अयूब को यही बताने की कोशिश की थी और तुम्हें भी बताना चाहता हूँ। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, बस एक हमदर्दी है, बरादराना हमदर्दी। मेरा लहजा खुद ब खुद जज्बाती हो गया था। बात सच्ची और नीयत पर खलूस हो तो सुनने वाला जरूर असर करता है। मेरा मुखातिब भी मुतासर हुआ था और उसके पलकों पर झलकते हुए आंसू उस बात का सबूत थे। उसने भीगी पलकों से मेरी तरफ देखा और गुड़गिर आवाज में कहा, कमर साहब, पाकिस्तान से मुझे भी इश्क था। इसकी रगों में मेरे खानदान के 7 अफराद का खून गर्दश कर रहा है, लेकिन मुसलसल महरूमी ने हर मोहब्बत वतन का दिल तोड़ दिया है और उसे तसल्ली के 2 अल्फाज बड़े भले मालूम होते हैं जिनमें उनके हुकूक देने का वादा किया गया हो। बहरहाल तुम्हारी बातों ने मेरी सोच को बदल दिया है। मैं मुखरी बहाने के लिए काम नहीं करूंगा। मैंने खुद को तुम लोगों के सुपुर्द कर दिया है। तुम्हारी मर्जी जो चाहे सलूक करो। उसने थके हुए अंदाज में सर झुका लिया। मैं उठकर उसके पास पहुंचा और प्यार से उसे गले लगा लिया। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, जब वे खुद बोल रहे थे। थोड़ी देर बाद जब उसका रोना कुछ कम हुआ तो मैंने उससे काम की बातें पूछी। नेवी के चंद अफसर भी मौजूद थे। नौजवान गोताखोर का नाम उमर खान था। उसने चढ़ागाम में मुखदी वाहिनी के खुफिया अड्डों और कारकुनों के बारे में मालूम फराहम की, जिन पर अमल करते हुए बहुत से शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें इसी दिन कमर इस्लाम से मिला और चंद जरूरी हदायत देकर उमर खान के साथ ढाका चलाया। यहाँ पर सूरत हाल बहुत गंभीर थी। मेजर अजाज ने बताया कि माशाल्लाह इंतजामिया सख्त परेशान है। शरपसंदों की बढ़ती हुई कार्रवाइयों के पेश नज़र चंद अहम अहदेदारों को इसरार है कि शहर में फौज तैनात की जाए, जबकि हुकाम को खतरा है कि फौज को देख कर अवाम में और ज्यादा इश्तियाल फैलेगा। रावलपिंडी में सदर साहब से रब्ता किया गया मगर जवाब खामोशी के सिवा कुछ ना आया। अब उम्मीद है कि कल से फौज शहर का नज़्म व नक़्श संभाल लेगी। मेजर रियाज की इस इतला में बहुत परेशान हुआ क्योंकि मुझे मालूम था कि फौज के सड़कों पर आते ही मुश्तरवाम से उसका तस्दुम होगा, लेकिन हुकूमत की भी मजबूरी थी। शरपसंदों के सामने मुकामी पुलिस बिल्कुल नाकारा होकर रह गई थी। हर रोज कहीं ना कहीं से कतल गारत गिरी या बम के धमाके की खबर आ जाती थी। गली गली हंगामे बढ़ते जा रहे थे और इन हंगामों पर काबू पाने की सिर्फ एक ही सूरत थी कि शहर को फौज के हवाले कर दिया जाए। चुनाचे अगले दिन शहर में कर्फ्यू नाफज कर दिया गया, लेकिन फौज को सख्ती से हदायत कर दी गई कि वो गोली न चलाए। फौज सारा दिन मुतनफर बंगालियों की गालियों और पत्थर बर्दाश्त करती रही, लेकिन कब तक जब पानी सर से गुजर गया तो गोली चली और 6 बंगाली मारे गए। मेरे हिसाब से मुजीबुर रहमान और आंद्रे पोफ के मन की मुराद पूरी हुई और उन्हें अपनी तहरीक के लिए नया टानुक मिल गया। उसके बाद तो हंगामों ने तूफानी रूख इख्तियार कर लिया। मेरी नजरों के सामने बस भूखे नंगे बंगाली थे जिनके सरों पर खून सवार था और हर गैर बंगाली को नेस्त और नाबूद कर देना चाहते थे। इन दिनों तशद्दुद के जो वाकयात मैंने देखे शायद दुनिया की तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। लगता था बेहिस दरिंदों के घोल है जिसे निहत्थे और कमजोर इंसानों पर छोड़ दिया गया है। फौज भी खून की सैलाब को रोकने में नाकाम रही। चंद दिन के बाद फौज को बैरकों में भेज दिया गया और शहर को मुजीबुर रहमान के हवाले कर दिया गया। गोया छीछड़ों की रखवाली बिल्ली के जुम्मे डाल दी गई और इस नेक काम को जो नतीजा निकलना था वो निकला। गैर बंगाली अवाम अपनी जानों और इज्जतों को बचाकर मगरब पाकिस्तान की तरफ कूच करने लगे। जो पाकिस्तान जाने की इस्तियात नहीं रखते थे वो ढाका छावनी में जमा होना शुरू हो गए। मेरे दुश्मन बिल्कुल जेर जमीन चले गए और 2 माह तक की मुसलसल जदोजहद के बावजूद मैं वो सुराग ना लगा सका। गेंद आंद्रे पोफ के कोर्ट से निकलकर अवाम के कोर्ट में चली गई। तरफ एक ना खत्म होने वाली खाना जंगी का आगाज हुआ। दरअसल वो दिन हमारी तारीख के सियातरीन दिन थे। हर तरफ खून और आग का दरिया नजर आता था। इस वक्त ढाका में कोई कानून नहीं था। गैर बंगाली लोग अपनी जानों को बचाकर या तो मगरबी पाकिस्तान चले गए थे या फिर उन्होंने फौजी छावनियों में डेरे डाल दिए थे। माशाल्लाह शल होकर रह गया था। फौजी जवान भी अकेले वकेले शहर में निकलने से डरते थे क्योंकि वो भी बंगाली आवाम की नफरत का निशाना बनते थे। मुक्ति बहाने की कार्रवाइयां जोर पकड़ती जा रही थी और सरहदों पर हल्की फुल्की झड़पें शुरू हो गई थी। फौज बिल्कुल बेदस्त होकर रह गई थी। आलमी सतह पर भारतीय प्रोपेगेंडा बड़ा कामयाब जा रहा था और पूरी दुनिया बंगाली आवाम को मजलूम और अवामी लीग और भारत को मजलूम का साथी समझकर पाकिस्तान को नापसंदगी की निगाह से देख रही थी। दुनिया का ठेकेदार अमरीका बाहर पाकिस्तान का साथ दे रहा था मगर दरपर्दा उसके तमाम हमदर्दियाँ और अमली तावन भारत को हासिल था। मशरकी पाकिस्तान में सूरत हाल थी और मगरबी पाकिस्तान में हमारे अहले इख्तदार और सियासतदान अय्याशियाँ कर रहे थे। मेरा मेजर साहब से बाकायदा रब्ता था। उन्होंने हदायत कर दी थी कि अवामी एजिटेशन से दूर रहूँ और आंद्रे पोफ और उसके साथियों से निबड़ने की कोशिश करूँ। यही वजह थी कि मैंने हर रोज होने वाले कतलेआम की तरफ से अपनी तवज्जो हटाकर आंद्रे पोफ की तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि इन मासूमों के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। दरअसल यह जिम्मेदारी मैंने उमर खान और अब्दुल्ला पर डाल दी थी और वो दोनों ही बड़ी मेहनत से इस पर काम कर रहे थे। बहुत दिन बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने सूरत हाल के बारे में पूछा। अब्दुल्ला ने बताया कि उनकी मेहनत रंग ला रही है और मोहब्बत नौजवान पाक फौज के दिफा के लिए मुतद हो रहे हैं। जगह जगह पर हुकूमत के तावन से अमन कमेटी और रजाकार फोर्स बनाई गई है जो एक तरफ से तकरीब कारों और शहर पसंदों की कार्रवाई का तोड़ करती है और दूसरी तरफ दुश्मन के बारे में अहम मालूम फौज तक पहुँचाती है। इन लोगों की तीसरी बड़ी कामयाबी अवाम में बंगाली और गैर बंगाली की तफरीक खत्म करने के सिलसिले में हुई थी। दूर दराज इलाकों में अब भी लोग पहले की तरह मिलजुल कर रहते थे। कहीं कहीं पर नौजवानों को अब्दुल्ला और उमर खान ने बाकायदा लड़ाई की तरबियत भी दी थी। यह सब मालूम हासिल करके मुझे बेहद खुशी हुई। मैं सोच रहा था कि अब अगर हमारी हुकूमत थोड़ी सकलमंदी से काम ले और नौजवानों को सही कर ले तो हम दुश्मन की एक चाल तो नाकाम बना ही सकते हैं। खैर साहब के मकान पर 2 दिन रुकने के बाद अब्दुल्ला और उमर खान वापस अपने मिशन पर चले गए। खैर साहब 1 महीना कहीं गुजार कर आ चुके थे जिनकी तफसीलात उन्होंने बताना शायद ज़रूरी नहीं समझा था। वैसे भी मैं उनके मामलात में दखल नहीं देता था। अलबत्त एक तब्दीली मैंने महसूस की थी। अब वो खींचे खींचे से रहने लगे थे। पहले तो मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद उनकी तबीयत खराब है, मगर बाद में एहसास होने लगा जैसे इन पर भी बंगाली नेशनलिज्म का जादू चल गया है और उन्हें अब पाकिस्तान से कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं रही है। ये कोई अचंभे की बात नहीं थी, जब बड़े बड़े लीडर और पाकिस्तान को तख्लीक करने वाले लोग पाकिस्तान के दुश्मन हो रहे थे, वहाँ एक सरमायादार भी उसके खिलाफ हो जाता तो क्या अजब था। मैंने अपनी तश्वीश से मेजर साहब को आगाह किया तो उन्होंने बड़े पुरेतमाद लहजे में जवाब दिया, कमर बेटे सूरज मगरब से तुलू हो सकता है मगर खैर साहब पाकिस्तान के गद्दार नहीं हो सकते, मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है, तुम जरा होशियारी से चेक करो कि असल मसला क्या है। मेजर साहब की बात ने मुझे तश्वीश में मुबतला कर दिया। इस दिन के बाद से मैंने घर के मामला पर गहरी नजर रखना शुरू कर दी। चंद दिन तो मुझे कुछ मालूम नहीं हो सका, लेकिन एक दिन मैंने एक नए मुलाजम को मशकूक अंदाज में अपने कमरे के करीब घूमता हुआ पकड़ लिया। इस वक्त रात के 12 बजे थे, आमतौर पर 10 बजे सो जाता था और इस दिन भी मैंने यही जाहिर किया था जैसे मैं कमरे में सो रहा हूँ, लेकिन दरअसल मैं रोशन ध्यान में से छुप कर राहदारी का जायजा ले रहा था। एक लंबा चढ़ा तिरंगा नौजवान था, कम से कम बंगाली तो नहीं लगता था। खैर साहब जब वापस आए थे उनके साथ ही आया था और खैर साहब ने बताया कि उसे मेमन सिंह से लाए हैं, जहाँ उन्होंने पहले खैर साहब के भाई के पास मुलाजिम था। खैर साहब ने इसका नाम नजर बताया था। नजर बहुत मोहताज अंदाज में इधर उधर देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। मेरे कमरे के दरवाजे पर पहुंच कर उसने एक बार फिर चारों तरफ का जायजा लिया और की होल से अंदर झांकने लगा। अंदर पर्दे के अलावा उसे कुछ नजर न आया तो उसने जेब से एक चाबी निकाली और ताला खोल कर आहिस्ता से अंदर आ गया। इस इतफाक की कही है कि मैं हाथ बाथरूम की लाइट बुझाना भूल गया था, इसलिए गुमान हुआ कि मैं बाथरूम में हूँ। वो दबे कदम चलता हुआ मेरे बिस्तर तक आया और मेरे तकिए के नीचे और सराहने पर रखी हुई अलमारी की तलाशी लेने लगा। मैं उसे गौर से देख रहा था। अलमारी से उसने आंद्रे प्रूफ वाला ट्रांसमीटर निकाला और जल्दी से जेब में रख लिया। फिर उसने तमाम चीजें पहली वाली पोजीशन में रखी और कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ा। मैं इतनी देर में रोशनदान से उतर उसके पीछे पहुंच चुका था। अचानक मुझे अपने सामने देख कर बौखला गया और जब कोई बात समझ में ना आई तो मुझ पर हमला कर दिया। वो कोई तरबियत याफ्ता लड़ाका नहीं लगता था। मैंने उसे जल्दी ही काबू कर लिया और एक तो जोरदार हाथ उसे कनपटी पर जमा दिया। मेरा इरादा उसे कमजोर करने का था मगर वो इतना बोझा निकला कि हाथ लगते ही लंबा लेट गया। मैं झुककर उसकी नौबत देख रहा था कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई की होल से अंदर झांक रहा है। मैं दरवाजे की तरफ झपटा मगर वहां कोई नहीं था। दरवाजे को अच्छी तरह लॉक करके और चिशनी चढ़ाकर मैं वापस नजर के पास आ गया। वो भी जमीन पर लेटा लंबी लंबी सांसें ले रहा था। मैंने उसे उठाकर अपने बिस्तर पर लिटाया और उसे होश में लाने की तदबीर करने लगा। नजर तो होश ही में नहीं आ रहा था। अलबत्त मुझे कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी थी। मैंने काफी गौर भी किया लेकिन कोई बात समझ में ना आई। एक घुटन का एहसास हो रहा था। मैं कमरे से निकलकर बाहर लॉन में आ गया। यहाँ भी दिल न लगा तो बाहर जाने की सोची और मेन गेट की तरफ जाने का इरादा किया। अभी मैं इरादे पर अमल भी नहीं कर पाया था कि जोरदार धमाका और मुझ कर कई फुट पीछे जा गिरा। मेरे समझने से पहले एक और धमाका और उसके बाद तो धमाकों के ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। मुझे मालूम था कि खैर साहब के बंगले में जेर जमीन एक पूरी दुनिया आबाद है, वहीं एक बड़ा असलखाना भी है। अगर फट पड़ता तो इर्द गिर्द के बहुत बड़े इलाके को तबाह कर सकता था। मैं तेजी से उठा और करीब से दीवार फैला कर सड़क पर आ गया। अड़ोस पड़ोस के लोग भी जाग गए थे और चीखते हुए घरों से बाहर निकल भाग रहे थे। मैं तेज रफ्तारी से एक सिमत में दौड़ रहा था। थोड़ी देर में पूरे इलाके में हंगामा बपा हो गया। पुलिस और फौज की गाड़ियां, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां उधर जाने लगी। पहले तो मैंने सोचा कि वहां जाकर सूरत हाल का जायजा लूं, लेकिन फिर मैंने ये इरादा तर्क कर दिया। असले के जखीरे में आग लगने के बाद इस इमारत में कुछ भी बाकी नहीं बच सकता था। पहले ही धमाके के बाद असल इमारत को गिरते हुए मैं अपनी आंखों से देख चुका था। मेरा दिन तेजी से काम कर रहा था और मैं सोच रहा था कि ये सब कुछ कैसे हुआ, क्या खैर साहब इस हादसे से बच गए हैं या वो भी इमारत के साथ ही उड़ गए हैं। नजर कौन था, उसने सिर्फ ट्रांसमीटर ही क्यों चोरी किया, क्या वो आंध्र प्रूफ का आदमी था? अगर वो आंध्र का आदमी था तो इसका मतलब है कि वो बहुत दिनों से हम पर नजर रखे हुए था। फिर तो अब्दुल्ला और उमर खान भी उसकी नजरों में आ गए होंगे। असले के जखीरे में आग लगने के बाद इस इमारत में कुछ भी नहीं बचा था। मैं सोच रहा था कि सब कैसे हुआ, क्या खैर साहब इस हादसे से बच गए हैं या वो भी इमारत के साथ ही उड़ गए होंगे। नजर कौन था, उसने सिर्फ ट्रांसमीटर ही क्यों चोरी किया, क्या वो आंध्रे प्रूफ का आदमी था? अगर वो आंध्रे का आदमी था तो इसका मतलब है कि वो बहुत दिनों से हम पर नजर रखे हुए है। फिर तो अब्दुल्ला और उमर खान भी उसकी नजरों में होंगे और मेजर अयाज भी, लेकिन उसने इतने दिन मुझे क्यों ढील दे रखी? कोई बात वाजिया नहीं थी। मैं सोचता जा हुआ चला जा रहा था, कभी आंद्रे के बारे में, कभी अपने मुस्तकबिल के बारे में, क्योंकि खैर साहब के घर के अलावा तो मेरा कोई ठिकाना भी नहीं था। कभी तो अब्दुल्ला और उमर के बारे में, कभी मेजर साहब के बारे में, कि जब उन्हें खैर साहब के मकान की तबाही की खबर मिलेगी तो वो यकीनन मेरे बारे में फिक्रमंद हो जाएंगे। मैंने सोचा कि मैं सिर्फ मेजर साहब को अपना जिंदा होने की इतला दे दूँ और बाकी सारी दुनिया के लिए मुर्दा बन जाऊं। अब्दुल्ला उमर दराज मेजर रियाज को मैं इस रात में शरीक न करने की वजह यह थी कि मेरे ख्याल के मुताबिक सब आंद्रे पूफ की नजरों में आ चुके थे और उनमें कोई भी उसके हत्थे चढ़ सकता था और आंद्रे को मेरे वजूद से आगाह कर सकते थे। क्योंकि मेरा इरादा यह था कि जिस तरह आंद्रे को प्यारे कर मुझे जहनी तौर पर पहचान कर रहा है, मैं भी उसे गलतफहमी में मुबतला करके अपना मिशन जारी रखूँ। किसी दिन उसकी लाइलमी में उसे दर्द दबोचूँ। इन्हीं सोचों में गुम चलता हुआ मैं काफ़ी दूर निकल आया था। यह बंगले के एक दूसरे से ज़रा दूर दूर थे, कहीं कहीं खाली जगह पर गरीब लोगों ने झुग्गियाँ डाल रखी थी, जहाँ दिन भर की जान हलकान कर देने वाली मेहनत के बाद रात को आराम किया करते थे। मैंने सोचा भला ये इन बांस की झुग्गियों में ज़मीन पर लेट कर क्या आराम करते होंगे। इस वक्त अक्सर झुग्गियाँ अंधेरे में डूबी हुई थी, सिर्फ एक में शायद मोमबत्ती या लालटेन जल रही थी। मुझे सख्त प्यास लग रही थी, सोचा चलकर वहाँ से पानी पी लूँ। अभी मैं झुकी के करीब ही पहुंचा था कि अंदर से किसी और की दर्दनाक चीख बुलंद हुई। वो खुदा का नाम ले लेकर फरियाद कर रही थी, मगर उसका जुमला पूरा होने से पहले उसकी आवाज़ बंद कर दी गई। मैं दौड़ता हुआ झुकी तक पहुंचा और जो मंजर मैंने देखा बिल्कुल नाकाबिले यकीन था। वो 10-12 साल की एक मासूम बच्ची थी जो एक मुसालम की दरिंदगी का निशाना बन रही थी और वह दरिंदा कोई और नहीं, हमारी पाक फौज का एक जवान था। पाक फौजी के इस नापाक फेल को देख कर मेरा खून खोल उठा। मैंने आगे बढ़कर एक झटके से उसका गिरबान पकड़ लिया। मैं शदीद गुस्से में था, इसलिए पहले ही झटके में बौखला गया। मजलूम बच्ची उसके चुंगल से आजाद होती ही अपने फटे कपड़ों को समेटती हुई झोपड़ी के एक निस्बतन तारीख गोशे में सिमट गई। मैंने जालू फौजी के 2-4 पंच जड़ दिए। जी तो चाह रहा था कि उसे जान से ख़त्म कर दूं, मगर वो पाक फौज का जवान था और उसका मुकदमा फौजी अदालत में ही चलना चाहिए था, ताकि अगर शैतान किसी दूसरे को रस्से से भटकाना चाहे तो भटकने वाला उसके हशर से इबरत हासिल करे। मैंने एक नज़र उस बच्चे को देखा और फिर फौजी को काले से फौज कर घसीटता हुआ झोपड़ी से बाहर निकाल आया। वो मुझे मेरे बुरे अंजाम की धमकियाँ दे रहा था और अपने फौजी होने की धौंस जमा रहा था। रात का आखिरी पहर था, खुली जगह होने की वजह से अंधेरा ज़्यादा नहीं था, ठंडी हवा चल रही थी और झोंपड़ों और ऊंचे दरख्तों के पस मंजर में थोड़े थोड़े फासले पर मौजूद बंगलों के मदम हेबले नजर लहराते हुए महसूस हो रहे थे। आखिरी तारीखों का चांद शब के मुख्तसर सफर के बाद अपनी रोशनी समेत कहीं छुप गया था। झोंपड़ी के बाहर बहुत से अफराद जमा हो चुके थे। यह आसपास की झोंपड़ियों में रहने वाले लोग थे जो शायद चीखों और मार कुटाई की आवाज़ सुनकर इधर आ गए थे और अब हैरत और तजस्सुस से हमें देख रहे थे। जब उन्हें असल बात का इल्म हुआ तो नफरत की एक लहर उनके जिस्मों में दौड़ गई। दो एक नौजवान गुस्से से उसकी तरफ झपटे और मेरे रोकने के बावजूद कई घूंसे उस फौजी के जिस्म पर जड़ दिए। उधरा घबरा गया और खुद को बचाने के लिए उधर उधर भागने लगा, मगर मेरी मजबूत गिरफ्त से छूट नहीं सका था। वो मुसलसल धमकियाँ दे रहा था। जब लड़के दोबारा उसकी तरफ बढ़े तो उसने मेरे पीछे पनाह लेने की कोशिश करते हुए खबरदार कोई मुझे हाथ ना लगाए वरना इस पूरी बस्ती को गोलियों से भून दिया जाएगा। उसकी धमकी कारगर साबित हुई। बेसर हुए नौजवानों ने उसे हाथ लगाए बगैर दूर ही दूर से गालियां बकने लगे। उनके लहजे जहरीले थे और अंदाज जारहाना। एक नौजवान बोला, ये पंजाबी लोग यहाँ आती ही अय्याशी के लिए हैं। खबीर फौजी कहते हैं हम बंगाल की हिफाजत के लिए आए हैं, हमारी हिस्सों से खेल रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब बांग्लादेश आज़ाद होकर रहेगा। वो ना जाने क्या कुछ कहता कि सड़क की जानब से एक फौजी जीप को आधा देख कर खामोश हो गया। जीप हमारे करीब आकर रुक गई, उसमें से कैप्टन और दो जवान बैठे थे। मेरी गिरफ्त में फौजी को देखकर वो फौरन नीचे उतरे। जवानों ने अपनी स्टैंड गनों से वहाँ मौजूद लोगों को कवर कर लिया। सब लोग हाथ उठाए खौफजदा अंदाज में खड़े थे। कैप्टन ने मुझे सख्त लहजे में फौजी को पकड़ने की वजह पूछी। कैदी फौजी भी अपने साथी को देखकर शेर हो गया था, उसने अपना गिरबान छुड़ाकर मुझे एक झोंसा मेरे चेहरे पर रसीद कर दिया। वो वहाँ खड़े लोगों को और मुझे गालियाँ बकता हुआ दोबारा मुझ पर हमला हुआ। इस बार उसने पूरी कुवत से चाकू चलाई थी, निशाना मेरा पेट था। फौजी बूट की ठोकर किसी आदमी को लगती तो यकीनन वो बेहोश हो जाता, मगर मैं एक मुक्का खाने के बाद होशियार हो गया था। इस फौजी से वैसे भी मुझे कोई हमदर्दी नहीं रही थी। जैसे ही उसने अपनी पूरी कुवत से लात घुमाई, मैंने मखसूस अंदाज में अपना पाँव उसके सामने कर दिया। चटाख की आवाज़ के साथ ही फौजी की दिलजोख चीख भी फिजा में बुलंद हुई। उसकी पिंडली की हड्डी टूट चुकी थी। अपने साथी का हशर देखकर वो दोनों जवान मुश्तर हो गए। वो फायरिंग करने के लिए कैप्टन के हुक्म के मुंतजर थे, बिल्कुल तैयार खड़े थे। कैप्टन ने एक नज़र जमीन पर तड़पते फौजी को देखा, फिर मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ। उसने गहरी नज़र से मेरे शराबे पर जायजा लिया और अंग्रेजी में पूछने लगा, तुम बंगाली तो नहीं? मैं पाकिस्तानी हूँ, क्या करते हो? उसने सवाल किया और मैंने खुद को साबका फौजी के हैसियत से मुतारफ करा दिया। मुझे अपने पीटी भाई जान करूँ के तेवर कुछ बदले और अंदाज में नरमी आ गई। कैप्टन की ड्राफ्ट करने पर मैंने उसे सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। पूरी बात जानने के बाद कैप्टन एक हल्का सा कहका लगाया और बोला, बस इतनी सी बात पर तुमने अपने साथी की टांग तोड़ दी? इतनी सी बात? मैंने शदीद हैरत से आँख फाड़ते हुए कहा, इतनी सी बात है? किसी गरीब की तरह से खेलना छोटी सी बात है, और गरीब भी कौन, एक मासूम कमसन बच्ची। मुझे कैप्टन के रवैये पर बहुत दुख पहुंचा था। फौज में मैंने भी यह कर्जा गुजारा था और मुझे मालूम था कि पाक फौज के जवानों को पाकबाजी की अहमियत का कितना एहसास होता है। वो तो किसी दुश्मन की तरफ भी मेरी नज़र से नहीं देखती, ये तो फिर भी अपनी कौम की बच्ची थी। इंसानी रिश्तों और इंसानियत का ज़रा पास नहीं, उनके अखलाक इतने तबाह हो चुके हैं कि गुनाह पर शर्मिंदा होने के बजाय उसे मामूली बात करार देकर जान छुड़ाना चाहते थे। मैं हैरत और दुख के मेरे जुड़े तासरात से कैप्टन को देख रहा था। मेरी बात सुनकर उसका मूड बदल गया था और नफरत से मुझे घूर रहा था, जैसे उसकी राय से इख्तलाफ करके मैंने बड़ा जुर्म कर दिया हो। चंद लम्हे घूरने के बाद बोला, जवान अगर तुम फौजी ना होते तो मैं तुम्हें शूट कर देता। एक गलीज मंगालन के लिए तुमने हमारे जवान को जख्मी कर दिया और अब मेरे सामने बदतमीजी करते हो। उसने हकारत से वहाँ खड़े हुए लोगों को देखा, फिर मुझे देखा और कहने लगा, ये अकीर लोग जिनकी वजह से हम अपने घरों से दूर या जंगल में पड़े हैं, जिनकी हिफाजत के खातर दिन का चैन और रातों का सुकून तबाह कर लिया है, और जिनके लिए दुश्मनों की गोलियों के सामने सीना सफर रहते हैं, ये लोग हमें क्या देते हैं? पार्ट 12 में इख्तिताम पजीर होता है। इस किताब के मजीद वाक़ियात के लिए सुनिए पार्ट 13।